ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं तपस्वी कुमारों के प्रति। मुरली है 28 दिसंबर 1979। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। कुमारों से सभी अविनाशी कुमार है। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं और कुमार कुमारियां विनाशी अल्पकाल के सुख को पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो सभी हाई जंप वाले होना। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं क्योंकि गिरने से बच गए। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं, तो बचे हुए को देख खुशी होती है ना। तो बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं, सभी अविनाशी कुमार है। इसका मतलब दो प्रकार के कुमार और कुमारियां हैं, एक है विनाशी और दूसरे अविनाशी। अविनाशी अर्थात जिनकी इस जीवन में कभी मृत्यु ना हो। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स अतिरिक्त अंक किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प का कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। कुमार कुमारियां क्या करते हैं? सब कुछ जानते हुए सब कुछ देखते हुए दृढ़ संकल्प करके त्याग करते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने मुबारक दी है अव्यक्त वाणी में। त्याग के पीछे जो भाग्य है, भाग्य के पीछे जो त्याग है, उसको देखकर बाप दादा त्याग की मुबारक देते हैं। तो उस त्याग का भाग्य मिलता है। कौन सा त्याग? प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं। कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। किस सुख की बात कर रहे बाबा? दुनियावी सुख, संसारी सुख कैसा है? वो अल्पकाल का है और विनाशी है। अगर वो अल्पकाल का है और वो विनाशी है, तो सारा संसार उसके पीछे क्यों है? पता तो उनको भी है कि अल्पकाल का है, फिर भी उसके पीछे है क्यों? वो तो उसी को सुख समझते हैं। क्या संसार का सुख सुख है? दुखाई नहीं देता। भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि जो दुख है वो सुख भास रहा है, परंतु वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार के जो नाते हैं वो कैसे हैं? कल की मुरली से छी छी और कलियुगी, देह सहित देह के सारे संबंध क्या कर दो, त्यो तोड़ दो। कल कहा था ना, माँ बाप के भी जो संबंध है वो तोड़ दो, संसार के जितने नाते हैं सब तोड़ दो, और नाता किससे जोड़ो? एक पाप से जोड़ो और नई दुनिया से नाता जोड़ो। और वरदान में तो कहा था इस देह से भी नाता तोड़ दो। ये देह उधर और हम इधर, बीच में क्या हो? खाई संसार के सुख, देह के सुख, देह के नाते, देह के संबंध, देह के रिश्ते, सभी छींची, सभी कलयुगी और सभी अंततोगत्वा दुख में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके लिए उनमें सुख नहीं है। फरिश्ता स्थिति अर्थात देहभान से परे स्थिति, फरिश्ता स्थिति अर्थात देह से कोई रिश्ता नहीं, डबल लाइट फरिश्ता अर्थात देह से कोई हिसाब किताब नहीं, देह से कोई लेन देन नहीं, सारी लेन देन, सारे हिसाब किताब एक बाप से, इस संसार की किसी आत्मा से कोई लेना देना नहीं, इस देह से भी लेना देना नहीं। ये डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं सभी अविनाशी कुमार है। उनको क्या मिला है? एक्स्ट्रा मार्क्स मिली है। कौन सी एक्स्ट्रा मार्क्स मिली है? विवाह न करके क्या प्राप्ति हुई है? ये वो बताए जिन्होंने विवाह किया है, क्या क्या खो दिया और क्या क्या इधर मिला और क्या क्या उधर गवाया। माताएं, कुमार रहना अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? गृहस्थ में ऐसे फंसे कि निकलना भी मुश्किल है। आज की मुरली में बाबा ने गृहस्थ और ट्रस्ट की परिभाषा दी है, पर बाबा ने जो परिभाषा दी है वो विवाह पर आधारित परिभाषा नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि गृहस्थी अर्थात विवाह है या नहीं है। संसार से कोई लेना देना नहीं कहा है। गृहस्थ अर्थात देहभान, ट्रस्टी अर्थात आत्मिक स्वरूप, गृहस्थ अर्थात मोह माया में फंसे हुए, ट्रस्टी अर्थात उड़ता हुआ निर्बंधन आत्मिक स्वरूप। बाबा ने तो बहुत ऊंची परिभाषा दी है ट्रस्टी और गृहस्थी की आज की अव्यक्तवाणी में पार्टियों से मुलाकात। तो किसी एक संत के बेटे ने उससे कहा, मेरा विवाह करने का विचार है, क्या करूं? संत ने कहा, अभी तुम बच्चे हो, जब प्रौढ़ हो जाओगे तब विवाह करना। उसने कहा कि इसका क्या, कब पता चले कि मैं प्रौढ़ हो गया हूं, मैच्योर्ड हो गया हूं, उसका प्रमाण क्या है, वो कैसे सिद्ध हो? वो कहता है कि जब तुम्हें ये लगे कि विवाह बिल्कुल ही बचकानी वस्तु है, बहुत ही व्यर्थ की बात है, तब समझ लेना कि तुम प्रौढ़ हो गए हो। जब लगे कि विवाह संपूर्ण निरर्थक है तब मेरे पास आना, फिर हम विवाह की बातें करेंगे। मोह माया के बंधन में एक बार फंसने के बाद वहां से निकलना अतीव मुश्किल है। इसके लिए बाबा कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? तो एक एक्स्ट्रा मार्क तो ये मिल गई कि बंधन से मुक्त हो गए, उस चक्र में गए ही नहीं। और मनी भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स कौन सी मिली है आपको? उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। और क्या? हाई जंप नहीं, मार्क्स हाई जंप ले सकते हैं, चलो ये भी एक है। उसके कार्य में पूरा के पूरा मददगार बन सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ, ही दैट इज मैरिड थिंक्स अबाउट हिज वाइफ दैट हाउ ही मे प्लीज हर, ही दैट इज अनमैरिड थिंक्स अबाउट द लॉर्ड दैट ही हाउ ही मे प्लीज हिम। जो विवाहित है वो ये सोचता है कि मैं अपने पत्नी को कैसे खुश करूं, जो अविवाहित है वो ये सोचता है कि मैं अपने प्रभु को कैसे खुश करूं। संसार में एक दूसरे को कोई खुश कर सकता है क्या? कितना भी खुश करो, अंत में हाथ में कुछ नहीं आता है। तो सभी अविनाशी कुमार है। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिली है? तो निर्बंधन है, हाई जंप लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना परमात्म कार्य में सहयोग दे सकते हैं। कुमार कुमारियों की, कुमारों की निशानी क्या है? आज की मुरली में बाबा ने कहा हनुमान हनुमान की तीन विशेषताएं सुनाई हैं। एक तो उसके हृदय में भगवान है। हनुमान को क्या करते हुए दिखाया है? हृदय फाड़ते हुए दिखाया ना, तो उसके हृदय में एक हनुमान राम है। तो कुमार अर्थात महावीर, अर्थात हृदय में एक राम। गृहस्थ के हृदय में एक राम होना मुश्किल है, हो सकता है परंतु पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरी निशानी, लंका को जला दिया, अर्थात मोह बंधनों से स्वयं को मुक्त कर दिया, या मोह बंधनों का जो राज्य था उसी को जला दिया, अब वो स्वयं निर्बंधन है। तीसरा, सदा ही सेवाधारी है। सेवक का भाव है और माया की अधीनता समाप्त हो जाती है, माया के पास अधिकार नहीं रहता उसके समीप भी आने का। तो ये तीन निशानी आज की मुरली में बाबा ने हनुमान की सुनाई है। तो कुमार अर्थात हनुमान, बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, एक्स्ट्रा मार्क्स, अतिरिक्त अंक, और किस बात की मिलते हैं? कुमार बनने के फायदे या कुमारी बनने के फायदे? अंजलि बहन, कुमारी बनने के क्या फायदे हैं? साउंड नहीं आ रही है, इसको पीछे रख दूंगा सामने, आप इधर आ जाइए। एक्स्ट्रा मार्क्स, शक्तिशाली होंगे, क्योंकि कोई और बात की चिंता नहीं, शक्तिशाली होंगे, तपस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, बलशाली होंगे, संसार को सहयोग देने वाले होंगे, किसी के अधीन नहीं होंगे, अकेले चलने का सामर्थ्य उनमें होगा। कुमार कुमारिया, अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, सब कुछ पता है, सब कुछ देखा हुआ है, उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं। एक है, सारे सुखों को भोगो और फिर समझो कि सारे सुख व्यर्थ है। एक है, दूसरों के अनुभव से सीखना, या भगवान स्वयं कह रहा है कि संसार में सुख है ही नहीं, ये अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्यम असुखम लोकम गीता में कहा गया है। अनित्य भी है तो असुख है, यहाँ पर कोई सुख नहीं, सुख केवल भास रहा है। और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं, इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन, लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ना चाहे, बढ़ाना चाहे, बढ़ा सकते हैं। तो एक निशानी क्या है? निर्बंधन। संसार के बंधन उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते। तो सभी हाई जंप वाले होना, सेकंड में सोचा और किया, यह है हाई जंप। हाई जंप की परिभाषा, सोचा और किया। दो दिन पहले मुरली में वरदान था, स्थापना के निमित्त आत्माओं, सोचना और करना, इसमें जो अंतर है उस अंतर को मिटाओ। व्यर्थ की को परिवर्तन करने की मशीनरी तीव्र करो, तो क्या हो जाएगा? विश्व परिवर्तन की जो मशीनरी है उसकी स्पीड स्वतः ही तीव्र हो जाएगी। इसके लिए अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, संस्कार, स्वभाव, पांच चीजें, उनसे व्यर्थ को समाप्त करो, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ के समाप्ति की जो स्पीड है परिवर्तन की, वो तेज हो जाएगी। तो विश्व परिवर्तन की स्पीड से तेज हो जाएगी। इसके लिए सोचना और करना ये जो अंतर है इसको मिटाओ। था ना अभी अभी वरदान कि नहीं? सुना सुना ना। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा। बाबा को क्या होता है कुमार कुमारियों को देखकर? खुशी होती है, और क्या होता है? गर्व होता है, और क्या होता है निखिलेश भाई? कुमारों को देखकर बाबा को क्या होता है? नाज होता है उसको, और नशा चढ़ता है उसको, और उमंग सा बढ़ता है और गुणगान गाता है वो। कितनी श्रेष्ठतम आत्मा है जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है, उससे निकलकर जो बाहर खड़े हुए माया को चैलेंज करने वाले जो है वो कोई साधारण नहीं हो सकते। बाप उन पर न्यौछावर होते हैं, फिदा होते हैं, बलिहार जाते हैं, गुणगान गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, उधर फिर वो कीर्तन बनता है। तो कुमार कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि गिरने से बच गए। गिरना किसे कहा जाएगा फिर? काम विकार गिरना, और क्योंकि गिरने से बच गए, देहभान में आना गिरना, दलदल में फंसना ये गिरना है। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं। गृहस्थ क्या है? दुख की सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ने में मेहनत है, फिर भी चढ़ते हैं, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है। फल लगे हुए हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की टोलियां भी दिखाई देती है, जिसे खाने के आकर्षण में चढ़ते हैं, और चढ़कर जब पहुंचते हैं तो पता चलता है ये तो क्या है, कड़वे पॉइजन है। पाश्चात्य जगत में एक लेखक हुआ है, लियो टॉलस्टॉय, उसने कहानी लिखी है। उस कहानी में वर्णन है एक गरीब किसान का, जो अति गरीब, निर्धन, निरीह, कमजोर, दुर्बल है। एक दिन एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके घर आता है और उसको कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उस दूसरे देश में जाना चाहिए, साइबेरिया में, जहां पर जमीन जो है बहुत ही सस्ती मिलती है। तुम कब तक इस तरह मरमर के जियोगे? तुम उधर क्यों नहीं चले जाते? उस किसान को वो बात जच जाती है। सोचता है, बात सही है, कब तक इस तरह मरमर के जियूं? क्यों ना मैं उस दूसरे देश में चले जाऊं, सब कुछ बेच के। वो उस नए देश में पहुंचता है, साइबेरिया, और वहां जाकर वहां के ग्रामीणों से पूछता है कि यहां जमीन का क्या मोल है, क्या भाव है। वो लोग कहते हैं, अरे जमीन का भाव, यहां तो जमीन मुफ्त में मिलती है। बहुत ही खुश हो जाता है, परंतु एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि जितना तुम चलोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। सूर्योदय से चालू करना होगा और सूर्यास्त तक लौटना पड़ेगा। एक लकीर खींची जाएगी, वहां से चालू करना पड़ेगा, परंतु शाम तक तुम लौट आओ और जितने कदम तुम चलोगे वो सारी ही जमीन तुम्हारी ही होगी। बहुत खुश होता है, सुबह सुबह तैयार होकर भोजन और पानी लेकर खड़ा हो जाता है, और सारा के सारा गांव वहां पर एकत्र होता है, निकल पड़ता है लकीर को लांग कर। सारे ही गांव वाले उसे शुभकामनाएं देते हैं। पहले तो चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, सोचता है अगर दौड़ू तो जमीन थोड़ी ज्यादा मिलेगी, तो क्यों ना मैं दौड़ू। दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है। 8 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं, और तेजी से दौड़ता है, और तेजी से दौड़ता है, हाफने लगता है, दौड़ते जाता है, हाफने लगता है, दौड़ते जाता है, सोचता है खाना खाने के लिए कहीं रुक जाऊंगा और पानी पीने के लिए रुक जाऊंगा, परंतु फिर संकल्प आता है कि अगर रुका तो थोड़ा कम हो जाएगा, सारा उम्र भर तो फिर खाना ही है, फिर तो पीना ही है, तो क्यों ना चलते चलते ही, दौड़ते दौड़ते ही खाना खाऊं और दौड़ते दौड़ते ही पानी पीऊं, इसमें बुराई क्या है? आज तक तो बैठ कर खाया, एक दिन दौड़ के ही सही। भागता है और भागते ही जाता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, क्योंकि लक्ष्य सामने है कि जितनी जमीन में भागूंगा उतनी मेरी हो जाएगी। दोपहर ही हो जाती है, 12 बज जाते हैं, सूरज आसमान में ऊपर, सोचता है अब वापस लौट चलूं, क्योंकि अगर अब नहीं लौटा तो शायद पहुंच नहीं सकूंगा, परंतु सामने की जमीन बहुत ही सुंदर दिखती है, सामने की जमीन बहुत ही आकर्षण करने वाली है। अगर ये जमीन मिल जाए तो फिर जीवन में तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचता है थोड़ा और भाग लूं, भागता है और हाफता है। सोचता है ये बोझ भी क्यों रखूं, और पानी भी फेंक देता है और भोजन भी फेंक देता है, एक दिन पानी नहीं पी लूं और खाना नहीं खाऊं तो मर थोड़ी जाऊंगा। एक बजता है, फिर 2 बजता है, अब सोचता है कि अगर अब नहीं लौटा तो नहीं पहुंचूंगा, परंतु सामने की जो जमीन है वह और ही उपजाऊ, और ही उर्वर जमीन सामने आकर्षण कर रही है, आह्वान कर रही है, उसे बुला रही है, आ जाओ। सोचता है थोड़ी जमीन और ले ही लेता हूं, और थोड़ा भाग ही लेता हूं, और भागता है और हाफता है। और एक समय आता है, फिर सोचता है कि अब तो लौटना ही चाहिए, अगर अब नहीं लौटू तो सूर्यास्त तक पहुंच नहीं पाऊंगा, और फिर लौटता है, भागने लगता है। सोचता है ये कपड़े भी थोड़े भारी हो रहे हैं, क्यों ना इन कपड़ों को भी उतार के फेंक दूं ताकि अच्छे से भाग सकूं, कमीज भी उतार के फेंक देता है और भागने लगता है, परंतु अब सूर्य अस्ताचल में डूबता हुआ, सूर्यास्त होने लगा है, इतना तेजी से भागता है कि शायद ही जीवन में अब तक कभी भागा होगा। अब थोड़ा ही अंतर बच जाता है, परंतु सूर्यास्त अब होने ही वाला है, दूर से गांव वाले दिखाई देने लगते हैं। इतना तेजी से भागता है कि कुछ 2-3 फरलांग ही बचा उस लकीर को स्पर्श होने में कि धड़ाम से गिरता है, मर जाता है। सभी से प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? एक कारण है लालच, दूसरा इच्छा, और ये सब एक ही हो गए, लालच इच्छा। दूसरा कारण मोह, लालच आसक्ति लोभ मोह, एक ही है। दूसरा बताओ, आकर्षण मोह लालच लोभ आसक्ति एक, दूसरा कारण बताओ। ना समझी, कौन सी ना समझी? मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या काम आएगा। चलो ये भी एक दूसरे प्रकार का पॉइंट है, ना समझी थी। और संतोष भाई ऐसा क्यों हुआ? चंद्रशेखर भाई जी ऐसा क्यों हुआ? एक तो कारण सबने बता दिया, स्वार्थ लालच मोह आसक्ति आकर्षण सब एक हो गया, दूसरा कारण हो गया ना समझी, तीसरा कारण जजमेंट, उसका विस्तार की आवश्यकता है, कौन सा बताया? भविष्य की चिंता तो प्लान थे अच्छे अच्छे सुनहरे। हाँ, अच्छा, शरीर को थोड़ा ज्यादा ही थका दिया इसके वजह से, आकर्षण के कारण शरीर को असंतोष है जीवन में। और नहीं, और कोई दूसरा कारण बताओ। देखो वहां पर भागते हुए, देखो उस आदमी को अपनी आंखों के सामने कैसे भाग रहा है, और सोचो क्या कारण हो सकता है। आशीष भाई भाग रहा है, सब फेंक दिया है, भोजन और पीना खाने। हार्ट अटैक तो आया, पर क्यों? प्रश्न ही ये है कि हार्ट अटैक क्यों आया? अति अति महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा है। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र को उच्चाकांक्षी है दोनों भी, वैसे ही उच्चाकांक्षा है जो कि पूर्ण नहीं होती, ऐसी उच्चाकांक्षा है। और चाह, मोह, आसक्ति, लोभ, आकर्षण, प्रलोभन, साइड सीन, एक ही है। दूसरे बताओ, और एक कोई दूसरा कारण है? यदि वो 12 बजे लौट जाता तो पा लेता ना। तो 12 बजे अर्थात समय, समय के महत्व से भी ज्यादा समय का प्रबंधन, समय की प्लानिंग, वो भी एक कारण है। जीवन की इस अनंत धारा में व्यक्ति भी ऐसा ही भाग रहा है, भाग रहा है। गृहस्थी भी गृहस्थी के बोझ को पकड़े हुए भाग रहा है। आज के मुरली के वरदान में है, बोझ बाप को दे दो, जिम्मेवार बाप है। परंतु भगवान मिला है इस जीवन की यात्रा में, फिर भी सारा बोझ खुद ही के सिर पर पकड़े हुए मनुष्य भाग रहा है, और भाग रहा है, और भाप रहा है, और भाग रहा है, और रुका, और भगवान ने कहा कि अब मैं आया हूं, अब अशरीरी बनो, अब वापस जाने का समय है। परंतु सामने की जमीन गठरी सिर पे है, परंतु सामने की जमीन कैसी है? बहुत ही प्रलोभन देने वाली, मनहारी, मनोहारी, आकर्षण करने वाली, उर्वर, उपजाऊ जमीन उसे दिखाई पड़ती है। सोचता है फिर भी भागू, भगवान मिला है फिर भी भाग रहा है, संपूर्ण संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है फिर भी भाग रहा है, संगम युग का वर्षा मिला है, संगम युग का अतीन्द्रिय सुख मिला है फिर भी भाग रहा है, ईश्वरीय परिवार मिला है फिर भी इस परिवार को छोड़कर उस परिवार के पीछे भाग रहा है, और हाफ रहा है और भाग रहा है, और हाफ रहा है और भाग रहा है। भगवान आ चुका है, कह रहा है रिटर्न जर्नी का ये समय है, अब लौट चलो। कब तक भागोगे? अभी भी दौड़ चालू ही है। गांव वाले आज फिर कह रहे, आज एक फिर पागल मर गया, क्योंकि उनके लिए रोज ऐसा ही एक व्यक्ति आता है, ऐसी ही आरंभ यात्रा आरंभ करता है, और सारे गांव वाले वहां एकत्र होते हैं। वो व्यक्ति भागता है, आने से पहले रोज एक ऐसा ही व्यक्ति मर जाता है। साक्षी होकर सभी बस देखते हैं। कब सबको समझेगा कि ये दौड़ कभी न पूर्ण होने वाली दौड़ है? संसार की इच्छाएं और संसार के आकर्षण और संसार के साधन और संसार के प्रलोभन और संसार के इंद्रिय सुख, सम टोटल ऑफ ऑल द हैप्पीनेस, भोग की कामना अंततो गत्वा मनुष्य को दुख के ओर घसीटती है, अधोमुखी बनाने वाली है सभी वासनाएं। फिर भी उसमें फंसा हुआ भटकता रहता है। सभी अविनाशी कुमार है, सभी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिली है। एक्स्ट्रा मार्क्स ये मिली है कि ये बुद्धि आ गई, ये समझ आ गई, ये बोध हो गया, ये जीवंत सत्य की प्रतीति हो गई कि संसार के सुख सभी विनाशी है। ये जान जाना कितनी बड़ी बात है। गृहस्थी सारा जीवन बिताता है, मरणासन्न हो जाता है, मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, फिर भी कहता है कि एक बार फिर, वंस मोर। वासना छोड़ती नहीं उसे, काम का भोग उसके मनोमस्तिष्क पर ऐसा छाया हुआ है कि वह संस्कार, वह स्मृति, वह कामनाएं, वह इच्छाएं, वह तृष्णाएं, वह वासनाएं उसके मन को जकड़े हुए हैं, मरने को है परंतु फिर भी आसक्तियों से मुक्त नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कर आई, अंत राम कही आवत नहीं। राम का नाम फिर भी नहीं आता है, विकार हो विकार ही उसके मन मस्तिष्क में छाए होते, कहीं संसार की वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, उनकी स्थिति भी वैसे ही संसारियों की तरह तो नहीं है, ये चेक करना है। कुमार कुमारी अपने जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। किन चीजों का त्याग किया? उन चीजों का त्याग किया जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जिसे संसारी आत्माओं ने भोग कर त्याग किया, परंतु भोग कर त्याग करने के बाद और बिना भोग कर त्याग करने के बाद कर त्याग करने, इसमें क्या अंतर है? एक है भोग किया फिर त्याग कर दिया, एक है भोग किया ही नहीं और फिर त्याग कर दिया, क्या अंतर है दोनों में? जमीन आसमान का कौन सा अंतर है और कौन सी चीज समझ गए? एक है वो जिन्होंने संसार का भोग भोगा, एक है वो जो काम विकार में उतरे और जाना कि काम से दुख प्राप्त होता है, एक दूसरे है जो काम विकार में गए ही नहीं, जो देख कर त्याग किया उस त्याग में और जिन्होंने भोग कर त्याग किया उस त्याग में क्या अंतर है, यही प्रश्न है। स्मृतियां उत्तर क्या है? जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग तो कर दिया पर स्मृतियों से कैसे मुक्त होंगे? टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। काम का स्वाद जिसने चखा है वही मनुष्य का गिरना है। गिरने के बाद पता चला कि उसमें दुख है, परंतु जो भोगा उसके संस्कार अवचेतन में है, सबकॉन्शियस माइंड की परतों में अंदर समा गए हैं। भोग खाने के जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाते हैं, वस्तुओं के जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाते हैं, मोह के जो संस्कार है पुत्र मोह या फिर पति और पत्नी मोह, वो जो संस्कार है वो अवचेतन की परतों के नीचे तक नहीं घुसते, परंतु काम भोग के जो संस्कार है वो सीधा अंदर तक घुसे हुए है। अब समझ में आया है कि वो व्यर्थ है, परंतु स्मृतियों से कैसे मुक्त हो? प्रश्न ये है, स्मृतियां पूर्व जीवन में भोगी हुई स्मृति, हुए हुए भोग की स्मृतियां, चाहे कितना भी कोई भोग योग लगाते हैं परंतु वो स्मृतियां फिर से उभर कर चेतन में आती है। उसके लिए भगीरथ पुरुषार्थ की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, कठोर और घनघोर तपस्या की आवश्यकता है। भगीरथ पुरुषार्थ अर्थात जो भगीरथ जो था, भागीरथ जिसको कहते हैं उसी को भगीरथ भी कहते हैं। भागीरथ ने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या की कि गंगा को आसमान से धरती पर आना पड़ा। ये जो पुरुषार्थ है इसे भगीरथ पुरुषार्थ कहा जाता है या भागीरथ पुरुषार्थ, हिंदी में वो जैसे मुहावरा बनकर चल रहा है। ऐसी जब तपस्या की जाएगी अशरीरीपन की, तब कहीं जाकर भोग के वो जो संस्कार है, भोग की वो जो लकीरें है, भोग के वो जो चिन्ह बने हुए हैं वो मिटेंगे। ढीले ढाले पुरुषार्थ से, 3 दिन की भट्टी से और 4 दिन की भट्टी से तस से मस होने वाले नहीं है वो तो। ये सोच कर खुश मत हो जाओ कि यहाँ आ गए, 3 दिन मौन किया, थोड़े बहुत क्लासेस सुन लिए और यहाँ वहां कुटिया में बाबा को खत लिख दिया और हिस्ट्री हॉल में बैठ गए और बाबा के कमरे में बैठ गए और शांति स्तंभ से शक्ति ले ली थोड़ी बहुत, तो वो मिट जाएंगे। मेमोरीज बहुत गहरी है। इसके लिए वैसा ही पुरुषार्थ चाहिए। उन्हें भी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है जो कुमार और कुमारिया है, क्योंकि इस जन्म में नहीं भोगा परंतु जन्म जन्म वही भोगा है। आशीष भाई, इसके लिए अतिरिक्त खुशी की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन की वासनाएं छिपी है, अवसर की तलाश में है। अवसर मिलते ही ऐसी बाहर आएगी जैसे कि कोई बहुत बड़ा राक्षस, जैसे कि सुनामी, जैसे कि कोई बाढ़ सब कुछ बहा कर ले जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए उनको समूल नष्ट करना है, उन्मूलन करना है, इरेडिकेट टू डिस्ट्रॉय बाय अप्रूटिंग, रूट से ही निकाल देना है उसको। वो निकलेगा अशरीरीपन से, वह निकलेगा बीज रूप स्थिति से, वह निकलेगा पांच स्वरूपों के अभ्यास से, वह निकलेगा जबरदस्त तपस्या के संकल्प से, वह निकलेगा स्वयं को नियम और मर्यादाओं में आबद्ध करने से, वह निकलेगा सर्वशक्तिवान के साथ से, वह निकलेगा सर्वशक्तिवान बाप की स्मृतियों से, वह निकलेगा समान के गहरे अभ्यास से, वह निकलेगा बेहद के वैराग से, वह निकलेगा आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से, वह निकलेगा आत्मिक दृष्टि से, वह निकलेगा अनादि आदि स्वरूप की स्मृतियों से, डीप पुरुषार्थ, घन पुरुषार्थ, घनघोर पुरुषार्थ, भयंकर पुरुषार्थ, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं, बेहोशी में किया हुआ पुरुषार्थ नहीं, मूर्छा में किया हुआ पुरुषार्थ नहीं, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट में किया हुआ पुरुषार्थ नहीं, रूटीन में किया हुआ पुरुषार्थ नहीं, साधारण किया हुआ पुरुषार्थ नहीं। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, तो सभी हाई जंप लगाने वाले हैं। हनुमान को भी हाई जंप लगाते हुए देखा है ना, जल्दि लांज गए अचरज नाही, जल्दि लांज गए अचरज नाही, ऐसा उसका एक पैर जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है। हनुमान हमेशा कौन सी मुद्रा में दिखाते हुए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, जैसे चलने वाली दौड़ने वाली वो पोज है, वो है यहाँ पर सूक्ष्म याद की यात्रा में निरंतर वो जैसे संलग्न है, वो उसकी निशानी है। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। आज सोचा और अभी संकल्प करो, अभी इसी वक्त इसी यहाँ पर बैठते हुए कि ये करना है, तुरंत संकल्प और किया। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार कुमारियों को देख कर बाप दादा विशेष खुश होते हैं क्योंकि गिरने से बच गए हैं। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं तो बचे हुए को देख खुशी होती है ना। मुरली है 28/12/79 की। तो क्या सुना, बाबा कुमार कुमारियों के का वर्णन कर रहे हैं। दो अंग्रेजी शब्दों का बाबा ने यहां प्रयोग किया है, कौन से, एक्स्ट्रा मार्क्स और हाई जंप। दो शब्द याद रखना, जो लिख सकते हैं, जिन्हें लिखने की आदत है, चिंतन करने की आदत है। आज बाबा ने मनन करने को कहा है, मनन वाले सदा ही मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मनन वाले सदा मोहब्बत में समाये हुए होंगे, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मनन वाले जैसे सागर में समाये हुए होंगे, मनन वाले अनुभव के सागर में समाये होंगे, तालाब में समाये हुए नहीं होंगे। तालाब तो वो धर्म नेता है और संसार की महान आत्माएं हो, तुम सागर में समाये हुए हो, अनुभव का भी सागर है ना, तो जो मनन कर सकते हैं, जिन्हें मनन करने की शक्ति प्राप्त है, वो इस दो पॉइंट्स पर मनन करना है। एक्स्ट्रा मार्क्स अर्थात क्या, उसके पॉइंट्स कौन कौन सी, एक्स्ट्रा मार्क्स अतिरिक्त अंक कहाँ कहाँ मिले। दूसरा चिंतन का विषय है हाई जंप। हाई जंप लगाना अर्थात क्या, एक परिभाषा बाबा ने दी है, सोचा और किया, और दूसरी नौ परिभाषा और निकालो।